21वीं सदी का गंगावतरण क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला 22 अनुक्रमणिका 1 21वीं सदी का गंगावतरण 2 सदुपयोग न हो पाने की विडंबना 3 आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता 4 प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार 5 प्रखर प्रेरणा का जीवन तंत्र 6 लोक सेवी कार्यकर्ताओं का उत्पादन 7 विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय 8 घर घर अलख जगाने की प्रक्रिया दीप यज्ञों के माध्यम से 9 संधि बेला एवं 21वीं सदी का अवतरण 10 भावी संभावनाएं भविष्य कथन 11 सदी की आध्यात्मिक गंगोत्री 12 इस पूर्णाहुति के सत्परिणाम 13 शिक्षण सत्र व्यवस्था 14 अपने समय का महान आंदोलन नारी जागरण 15 विचार क्रांति जनमानस का परिष्कार 16 सृजन प्रयोजनों के निमित्त समयदान 17 दैवी सत्ता का सूत्र संचालन 21वीं सदी का गंगावतरण पिछले 300 वर्षों में भौतिक विज्ञान और प्रत्यक्षवादी ज्ञान का असाधारण विकास विस्तार हुआ है। यदि उपलब्धियों का सदुपयोग न बन पड़े तो वह एक बड़े दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। यही इन शताब्दियों में होता रहा है। फलस्वरूप हम अभावों वाले पुरातन काल की अपेक्षा कहीं अधिक विपन्न एवं उद्विग्न परिस्थितियों में रह रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, घातक विकिरण, बढ़ता तापमान, आण्विक और रासायनिक अस्त्र शस्त्र ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसमें मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा कठिन हो जाएगी। ध्रुव पिघलने लगे, समुद्रों में भयंकर बाढ़ आ जाए, हिमयुग लौट पड़े, पृथ्वी के रक्षा कवच ओजोन में बढ़ते जाने वाले छेद, पृथ्वी पर घातक ब्रह्मांडीय किरणें बरसाएं और जो कुछ यहाँ सुंदर दिख रहा है वह सभी जल भुनकर खाक हो जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले विज्ञान विकास को किस प्रकार सराहा जाए। भले ही उसने थोड़े सुविधा साधन बढ़ाए हों, इसे विज्ञान विकास से उत्पन्न हुआ उन्माद ही कहना चाहिए जिसने इसी शताब्दी में 2 विश्व युद्ध खड़े किए और अपार धन जन की हानि की। छिटपुट युद्धों की संख्या तो इसी अवधि में सैकड़ों तक जा पहुंचती है। धरती की समूची खनिज संपदा का दोहन कर लेने की भी योजना है। अंतरिक्ष युद्ध का वह नियोजन चल रहा है जिससे धरती और आसमान पर रहने वाले प्राणियों वनस्पतियों का कहीं कोई नाम निशान ही न रहे। प्रत्यक्षवादी तत्वदर्शन ने आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, नैतिकता, निष्ठा आदि मानवीय आदर्शों की गरिमा को एक कोने पर उठाकर रख दिया है। तात्कालिक लाभ ही सब कुछ बन गया है, भले ही उसके लिए कितनी ही प्रवंचना और निष्ठुरता क्यों न अपनानी पड़े। लगता है वर्तमान की विचारधारा मनुष्य को पशु बताने जा रही है जिस पर मर्यादाओं और वर्जनाओं का कोई अंकुश नहीं होता। विनोद का प्रमुख माध्यम कामुकता ही बन चला है जिसने नर नारी के बीच बचे हुए मर्यादाओं के पुल को तो विखंडित किया ही है, यौनाचार की प्रवंचना में भी उलझा दिया है। कारण सामने है, गर्भ निरोध के प्रयत्न चलते रहने पर भी जनसंख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि भावी पीढ़ी के लिए खाद्य, निवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबंध मुश्किल हो जाएगा और सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियां तक बंद करनी पड़ेंगी। इस अभिवृद्धि के रहते विकास के निमित्त बन रही योजनाओं में से एक के भी सफल होने की संभावना नहीं है। भूखे भेड़िए आपस में ही एक दूसरे को चीर फाड़ डालते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या की स्थिति में मनुष्य भी उसी स्तर तक गिर सकता है। सदुपयोग न हो पाने की विडंबना। प्रगति के नाम पर जो पाया गया था, यदि उसका सदुपयोग सत्प्रयोजन के लिए सर्वजनीन हित साधन के लिए किया गया होता तो आज दुनिया कितनी सुंदर और समुन्नत होती इसकी कल्पना सहज ही हो सकती है। पर दुर्भाग्य तो देखिए, जिसने समझदार कहलाने वालों को संकीर्ण स्वार्थपरता की जंजीर में कसकर बांध लिया और जो हाथ लगा उसे दुरुपयोग करने के लिए ही प्रेरित किया, फल सामने है। क्या गरीब क्या अमीर, सभी साधनों की दृष्टि से असंतुष्ट हैं और कुबेर जैसे वैभवान बनना चाहते हैं। मिल बांटकर खाने की किसी को इच्छा नहीं, एक दूसरे का शोषण दोहन करने के लिए ही आतुर हैं और निरंतर चिंतित, असंतुष्ट, उद्विग्न और आकुल व्याकुल बने रहते हैं। ऊपर की चमक देखकर प्रगति का भ्रम तो हो जाता है, पर वस्तुतः मनुष्य अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा चुका है। मरघट के भूत पलीतों की तरह आशंकाओं और उद्विग्नताओं के बीच डरता डराता जीवन जीता है। यह समूचा जाल जंजाल मात्र भ्रांतियों के समुच्चय पर आधारित है। यदि सही विचार करने और सही जीवन जीने की कला समझी और अपनाई गई होती तो आज संसार में सर्वत्र प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति का वातावरण ही बिखरा पड़ा होता। स्नेह, सौजन्य, सद्भाव और सहयोग के वातावरण में यहाँ हर किसी को उल्लास और आनंद का ही अनुभव होता रहता। इसके विपरीत आज सर्वत्र अनाचार का ही बोलबाला दिखता है। जो शांति और संतोषपूर्वक जी रहे हैं वे अंगुलियों पर गिने जाने जितनी स्वल्प संख्या में ही हैं। कुकृत्य कुविचारों की ही देन है। विक्षोभ भ्रांतियों से ग्रसित होने पर ही सताता है। आज की प्रमुख समस्या है विचार विकृति, आस्था संकट, भ्रांतियों का घटाटोप और कुविचारों का साम्राज्य। इस जड़ को काटे बिना कांटों की तरह बिखरे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा। विश्व वृक्ष को काटे बिना सुख शांति की आशा कैसे की जा सकेगी? आज की सबसे प्रमुख आवश्यकता। इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि विचार क्रांति का व्यापक आयोजन किया जाए, अवांछनीयता के विरुद्ध संघर्ष खड़ा किया जाए और मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन अपनाने के लिए हर किसी को बाधित किया जाए। नवयुग के अवतरण का सत्ययुग की वापसी का यही एकमात्र उपाय है जिसे संसार के समस्त युगों और क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। यही है धर्म की धारणा और सत्य प्रेम न्याय की आराधना। इससे बड़ा कोई पुण्य परमार्थ और दूसरा हो नहीं सकता। यही है वह महाभारत जिसके लिए महाकाल ने प्रत्येक प्राणवान को कटिबद्ध होने के लिए पुकारा है। यह मोर्चा जीतते ही उज्ज्वल भविष्य की संरचना में तनिक भी संदेह रह नहीं जाएगा। 21वीं सदी की ज्ञान गंगा तब स्वर्ग में अवस्थित रहकर दुर्लभ न रहेगी। हर किसी को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। हमें व्यापक विचार क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। समझदारों के सिर पर चढ़ी हुई नासमझी का उन्माद उतरना चाहिए। इसके लिए लोहा से लोहा काटने की, कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनानी पड़ेगी। सद्विचारों का इतना उत्पादन और वितरण करना पड़ेगा कि शोक संताप कहीं ढूंढे भी न मिले। कार्य बड़ा है, व्यापक है। 600 करोड़ मनुष्यों की ब्रेन वॉशिंग का प्रश्न है। उसमें अवांछनीयता की गर्दन काटने के साथ साथ मानवीय गौरव के अनुरूप उदारता से भरी पूरी विवेकशीलता की स्थापना की जानी चाहिए। एकता और समता की छत्रछाया में आने के लिए हर किसी को आमंत्रित ही नहीं बाधित भी किया जाना है। इसके लिए शुभारंभ कैसे और कहां से हो, यह बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा टेढ़ा प्रश्न है। इसके लिए आत्मदानी प्रचंड साहस के धनी प्राणवान चाहिए। उन्हें कहां से ढूंढा जाए, कौन उनमें प्राण फूंके, कौन उन्हें जुझारू संकल्पों से ओतप्रोत करे। चारों ओर दृष्टि पसारने के उपरांत एक यही उपाय सूझा कि खोज घर से आरंभ करनी चाहिए। दशरथ ने विश्वामित्र की याचना पर अपने ही पुत्र सुपुर्द किए थे। गुरु गोविंद सिंह के पांचों पुत्र अग्रगामी बने थे। हरिश्चंद्र ने स्वयं ही गुरु की आवश्यकता पूरी की थी। यह परंपरा आज फिर जीवित जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अपना उदाहरण प्रस्तुत करके ही दूसरों को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार। इस तथ्य को युग निर्माण मिशन के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने अपनाते हुए नव सृजन का श्री गणेश किया। निजी संपत्ति की एक एक पाई जनता जनार्दन को सौंपते हुए अन्यानियों को प्रोत्साहित किया कि वे भी लोभ मोह और अहंकार के बंधन शिथिल करके जो समय श्रम कौशल मनोयोग बच सके उसे लोक मंगल की युग की आवश्यकता विचार क्रांति के लिए यथासंभव नियोजित करें। 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने यही काम अपनाया है। अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए संपर्क क्षेत्र के हर परिजन को अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता अपनाने और आदर्शवादी मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित किया है। यह कार्य उन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया है। हिंदी की अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका तथा 7 अन्य भारतीय भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने मात्र वाचन की सामग्री ही नहीं दी वरन पाठकों के अंतरालों को इस सीमा तक झकझोरा है कि वे युग समस्याओं से जूझने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करेंगी। इन दिनों उनके द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या लाखों में है। हर अंक को न्यूनतम 5 व्यक्ति निश्चित रूप से पढ़ते हैं। इसलिए उनसे लाभ उठाने वालों की मिशन के साथ आत्मीयता स्थापित करने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसी जन शक्ति के माध्यम से विचार क्रांति के शुभारंभ से लेकर 21वीं सदी के गंगावतरण तक की विशालकाय योजनाएं बनाई और सक्रिय क्रियान्वयन की स्थिति तक पहुंचाई गई हैं। 1 से 5, 5 से 25 का अपना विस्तार तंत्र है। 5 लाख स्थायी सदस्यों के 25 लाख पाठक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने 5-5 साथी और तैयार करने का भार सौंपा गया है। इस प्रकार यह प्रयास दूसरी छलांग में ही 1 करोड़ के करीब प्राणवानों एवं सृजन शिल्पियों को समेट लेने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यही क्रम बढ़ते बढ़ते संसार भर के 600 करोड़ मनुष्यों को अपनी भुजाओं में जकड़ ले तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और न इस अपेक्षा के प्रति अनास्था ही व्यक्त करनी चाहिए। इसका बढ़ता हुआ परिकर यदि युग परिवर्तन का वातावरण बनाकर खड़ा कर दे तो इसमें अनहोनी जैसी कोई बात नहीं। प्रखर प्रेरणा का जीवन तंत्र। जनमानस के परिष्कार के लिए सशक्त लेखनी और वाणी की आवश्यकता तो है ही, इसके साथ ही ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए जो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्यानियों को युग के अनुरूप अपने विचारों और कार्यों में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। यह तीनों ही कार्य मिशन के सूत्र संचालक ने अपने समर्थ जीवन काल में पूरी तरह संपन्न किए हैं। समय श्रम और मनोयोग का एक कण भी अभीष्ट लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी काम में खर्च नहीं किया। प्रत्यक्ष है कि लगभग सभी आर्ष ग्रंथों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आचार्य जी ने किया है। चारों वेद 108 उपनिषद 6 दर्शन 24 गीताएं स्मृतियां ब्राह्मण आरण्यक आदि ग्रंथों के अध्ययन, अनुवाद करने और उन्हें सर्वसाधारण तक पहुंचाने में अथक एवं सफल परिश्रम किया है। लगभग 1500 पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जो व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म सिद्धांतों के समावेश का सरल एवं अनुभव भरा मार्गदर्शन करती हैं। इन दिनों 8 मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बात पहले ही बताई जा चुकी है। इस साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन हुआ है सो अलग बाजारों मूल्य पर साहित्य खरीदना इन दिनों सर्व साधारण के वश की बात नहीं है, इसलिए लगभग लागत मूल्य पर उसका प्रकाशन और झोला पुस्तकालयों एवं ज्ञान रथों के माध्यम से उसे घर घर पहुंचाने का प्रयास अपने ढंग का अनोखा है। प्राणवान परिजन घर घर जाकर शिक्षितों को युग साहित्य बिना मूल्य पढ़ने के लिए देते हैं और पढ़ लेने पर वापस ले आते हैं, बिना पढ़ों को सुनाते हैं। इसी सिलसिले में कुछ साहित्य बिकता भी रहता है और घरेलू पुस्तकालय बनाने की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जनमानस के परिष्कार की विचार क्रांति संपन्न करने के लिए दूसरा उपाय है वाणी अर्थात संगीत और प्रवचन। इसके लिए शांतिकुंज में ऐसी सत्र श्रृंखला निरंतर चलती रहती है जिसके हर सत्र में हजारों लोग आते हैं और उपरोक्त दोनों ही विधाओं को सीख कर जाते हैं। उन्हें यह विशेष रूप से सिखाया जाता है कि गिरों को उठाने का दायित्व लेने वाले को अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और साहसी होना चाहिए। मार्गदर्शक का निजी व्यक्तित्व लेखनी वाणी से अधिक सशक्त है। यदि वह ढीला पोला या गया गुजरा होता तो अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण होने के स्थान पर उपहास और कौतुक ही पैदा होता। सूत्र संचालक से मिली प्रेरणा के कारण ही अब तक इस प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शांतिकुंज ने प्रायः 1,00,000 युग शिल्पियों को कार्यक्षेत्र में उतारा है। इन कार्यकर्ताओं की अपनी गतिविधियां योजनाबद्ध रूप से अपने निकटवर्ती कार्यक्षेत्र में निरंतर चलती रहें, इसके लिए संस्था द्वारा जगह जगह छोटे बड़े आश्रम बना दिए गए हैं जिन्हें प्रज्ञापीठ नाम दिया जाता है। इसकी संख्या कुछ दिन पूर्व तक 2,500 के करीब थी, अब वह बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंच चुकी है। वे संस्थान अपनी व्यवस्था अंशदान और समयदान देकर स्वयं चला लेते हैं। लोकसेवी कार्यकर्ताओं का उत्पादन। जन जागरण के लिए शांतिकुंज से प्रचार टोलियां देश भर में भेजी जाती हैं, जिनके द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित जनता को अपना जीवनक्रम बदलने के लिए मर्मस्पर्शी उद्बोधन दिया जाता था। अब मांग और आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है। वैसे प्रशिक्षित प्रचारक हर क्षेत्र में बनते और बसते ही जाते हैं। वे अपने संपर्क क्षेत्र में हर दिन 2-4 घंटे मन लगाकर जनसंपर्क साधते और उल्टी दिशा में बहने वाले प्रवाह को उलटकर सीधा करने के लिए अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न करते रहते हैं। उपर्युक्त प्रचार प्रक्रिया के अतिरिक्त बड़ी बात है समर्पित कार्यकर्ताओं का नव सृजन के लिए जीवनदान। यह नियोजन अति कठिन है क्योंकि आमतौर से हर व्यक्ति निजी स्वार्थ साधन में इतना उलझा है कि उसे युग क्रांति जैसे परमार्थ प्रयोजनों में न तो रुचि है और न अवकाश। हर क्षेत्र में वेतन भोगी ही काम करते दिखते हैं, पर जहां तक भाव संवेदनाओं में आदर्शवादिता को कूट कूट कर भरने का सवाल है वहां साधु ब्राह्मण परिव्राजक वानप्रस्थ स्तर के निष्प्रिय कार्यकर्ता चाहिए, अन्यथा वे जन साधारण की श्रद्धा एवं आदर्शवादी कार्यों के लिए उनका सहयोगी न पा सकेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शांतिकुंज का प्रयास स्वावलंबी लोकसेवी तैयार करने का है। परिवार में श्रमदान तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से आजीविका चलाते रहें। कभी ऐसी परंपरा रही भी है, ब्राह्मण परिवार में से एक परिव्राजक लोक मंगल के लिए समर्पित किया जाता था। क्षत्रिय हर पवित्र पीछे एक सैनिक दिया करते थे। सिख धर्म में भी परिवार पीछे एक व्यक्ति गुरु कार्यों के लिए समर्पित किया जाता था। इस परंपरा ने ही उन कार्य क्षेत्रों को उच्च स्तरीय प्रतिभाएं प्रदान की हैं। अब वह सब कुछ लुप्त हो गया। शांतिकुंज ने उपर्युक्त परंपरा को वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन के रूप में आरंभ किया है और वह निरंतर बढ़ती जा रही है। शांतिकुंज परिसर के क्षेत्र में ही इन दिनों प्रायः 1500 व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित हैं जो अपनी अच्छी खासी आजीविका को छोड़कर समर्पित भाव से आश्रम में आए हैं और नित्य 10 घंटे श्रमदानी स्वयंसेवक की तरह काम करते हैं। आश्रम में न कोई सफाई कर्मचारी है, न धोबी, न नाई, न पहरेदार। इस प्रकार की आवश्यकताएं कार्यकर्ता ही मिलजुल कर पूरी कर लेते हैं। जिनके पास निज की आर्थिक व्यवस्था है वे उससे गुजारा करते हैं। जिनके पास वह नहीं है वे आश्रम से ब्राह्मणोचित आजीविका लेकर मितव्ययता भरा जीवन आत्मिक उल्लासपूर्वक जीते हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद का यह व्यवहारिक उपयोग देखते ही बनता है। लोग कहते सुने गए हैं कि व्यवहारिक साम्यवाद किसी को देखना हो तो शांतिकुंज आकर देखें। यहाँ जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान का उद्घोष पूरी तरह चरितार्थ होते देखा जा सकता है। 21वीं सदी की अनिवार्य आवश्यकताओं को देखते हुए इसी वर्ष यह संकल्प लिया गया है कि युग संधि के इन 12 वर्षों में 1,00,000 लोकसेवी प्रशिक्षित किए जाएंगे और विभिन्न प्रयोजनों से संबंधित कार्यक्षेत्र में उतारे जाएंगे। इसके लिए स्थानों की आवश्यकता देखते हुए उनके लिए नए भवन निर्माण की योजना चल पड़ी है। आशा की गई है यही आश्रम कुछ ही समय में प्रायः दूना कलेवर विस्तृत कर लेगा। शांतिकुंज की अर्थव्यवस्था परिजनों के स्वेच्छा सहयोग से चलती है। मिशन के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए परिजन बिना मांगे स्वेच्छा श्रद्धा से जो सहयोग भेज देते हैं उसी से मित्रतापूर्वक निर्वाह हो जाता है। इन स्वेच्छा सहयोगियों में अधिकांश ऐसे हैं जो 10 पैसा नित्य जितनी सहायता ही प्रस्तुत कर पाते हैं। विनोबा का मत था कि किसी संस्था को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक कि उसकी उपयोगिता अनुभव करने वाले उसे अंत प्रेरणा से सींचते रहें। इसी आदर्श का निर्वाह करते हुए शांतिकुंज ने अब तक का अभिनव कार्य चलाया है। भविष्य की बड़ी योजनाएं भी इसी आधार पर पूरी होती रहेंगी। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। शांतिकुंज की गतिविधियों में एक बड़ा काम है अध्यात्म का विज्ञान के आधार पर नए सिरे से प्रतिपादन। अब तक शास्त्र उल्लेख और आप्त वचन ही अध्यात्म सिद्धांतों को प्रतिपादन करते थे, पर अब बुद्धिवाद को प्रमुखता मिलने लगने से तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण आदि की अपेक्षा की जाने लगी है। शांतिकुंज का ब्रह्मवर्चस आश्रम इसीलिए विनिर्मित हुआ है। उसकी प्रयोगशाला में आधुनिकतम यंत्रों एवं अति महत्वपूर्ण पुस्तकों को ऐसा संचय किया गया है कि उसके माध्यम से चलने वाली शोध नई पीढ़ी की दृष्टि में आदर्शवादी तत्वदर्शन को प्रामाणिक सिद्ध कर सकें। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान के अंतर्गत जड़ी बूटी विज्ञान की शोध का एक ऐसा विभाग आरंभ किया गया है जिसे आयुर्वेद का जीर्णोद्धार भी कह सकते हैं। इन शोध कार्यों में उन विषयों के विशेषज्ञ और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कितने ही कार्यकर्ता संलग्न रहते हैं। इस प्रयोगशाला में एक विभाग और जोड़ा गया है ताकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक जीवनी शक्ति आंकी जा सके और उसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रयोजनों में करने का मार्गदर्शन किया जा सके। घर घर अलख जगाने की प्रक्रिया दीप यज्ञों के माध्यम से। मिशन का कार्य असीम है। उसके लिए देश देशांतरों में नगर, कस्बों, गांवों, मोहल्लों, घरों में जाना पड़ेगा और संपर्क साधने के लिए जनसाधारण को छोटे बड़े सम्मेलनों के रूप में एकत्रित करते रहने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वे भावनाशील, श्रद्धालु प्रकृति के उदारचेता मानस के हों। ऐसे सम्मेलन एवं समारोहों की आवश्यकता गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले पड़ेगी, जिससे हर क्षेत्र में नए युग का, नव जागरण का, नए परिवर्तन का संदेश पहुंचाया जा सके। आजकल सम्मेलन समारोहों में जनता की अरुचि बढ़ जाने से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करना कठिन पड़ता है, विशेष रूप से श्रद्धावानों को। इस कठिनाई का नया हल निकाल लिया गया है दीपयज्ञ इस प्रक्रिया के माध्यम से। पुरातन विधि विधान के अनुसार यज्ञ आयोजन में ढेरों पैसा खर्च होता है, ढेरों खाद्य पदार्थ जलते हैं, कर्मकांडों में ढेरों समय खर्च होता है। पुरोहित लोगों का कथन ब्रह्म वाक्य मानकर अपनाना पड़ता है। उनमें बहुत से लोग श्रद्धावश पहुंच भी नहीं पाते हैं। जो पहुंचते हैं वे टिकते नहीं। आयोजकों पर अनेक आक्षेप लगते हैं, फलत संगठन के स्थान पर आयोजन में विघटन पैदा हो जाता है। इन कठिनाइयों को देखते हुए युग धर्म के अनुरूप दीपयज्ञ की परंपरा प्रचलित की गई है। वह व्यापक, विस्तृत, सुलभ और स्वल्प साधनों में बन पड़ने के कारण उन सभी उद्देश्यों में सफल हुए हैं जिनके निमित्त प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते थे। हर याचक अपनी थाली पर 5 अगरबत्ती और 1 दीपक लेकर आता है। सभी वर्ग के नर नारी पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। सामूहिक गायत्री मंत्रोच्चारण होता है, साथ ही संगीत और प्रवचन के माध्यम से वह सब बताया जाता है कि स्थानीय लोगों को किस प्रकार प्रगतिशीलता के पथ पर चलना चाहिए और वर्तमान प्रचलनों में से किसमें क्या सुधार करना चाहिए। बाद में उपस्थित प्रतिभावानों का एक प्रज्ञा मंडल बना दिया जाता है। प्रातःकाल यज्ञ, दोपहर में विचार गोष्ठी करने की और सायं सभा सम्मेलन होने की विधा ने जन जागृति के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है और सर्वतोमुखी प्रगति का उत्साहवर्धक वातावरण तैयार किया है। अगले दिनों इसी प्रक्रिया को अपनाकर हर गांव नगर में पहुंचने और हर व्यक्ति से संपर्क साधने का निश्चय किया गया है। हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन समारोह कार्यकर्ताओं के माध्यम से हजारों की संख्या में संपन्न हो जाते हैं, उससे लाखों लोगों का मन प्रगतिशीलता के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है। युग संधि के इन 12 वर्षों में इस प्रक्रिया को देश विदेशों में अत्यधिक व्यापक बनाने की योजना है। संधिवेला एवं 21वीं सदी का अवतरण। 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी के आरंभ का मध्यवर्ती अंतर 12 वर्ष का माना गया है। सन 1989 से सन 2000 तक की अवधि को युग संधि माना गया है। रात्रि का अवसान और दिनमान का अरुणोदय जब मिलते हैं तो उसे संधि या संध्याकाल कहा जाता है। इस अवधि का अत्यधिक महत्व होता है। पक्षी चहचहाते, फूल खिलते और सभी प्राणी तंद्रा छोड़कर अपने अपने कार्य में उत्साहपूर्वक निरत होते हैं। उपासना जैसे कृत्यों का भी यही उपयुक्त समय माना जाता है। समझा जाना चाहिए कि युग संधि के 12 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण संभावनाओं से भरे पूरे हैं। इसमें पिछले 300 वर्षों से चली आ रही अवांछनीयताओं का प्रायश्चित होगा और सुखद संभावनाओं से भरी पूरी 21वीं सदी का बीजारोपण भी इन्हीं दिनों होगा। अवांछनीयताओं का समापन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दिनों पूरे जोर शोर से चलेगी। घड़ी का पेंडुलम एक सीमा तक ही आगे बढ़ता है, फिर उसे वापस लौटना पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि वह अतिवाद किसी का भी सहन नहीं करती। सृष्टि ने नियंत्रण और संतुलन का नियम भी बनाया है। पिछले 300 वर्षों में मनुष्य ने हर क्षेत्र में उद्दंडता अपनाई है। उसका प्रतिफल मिलना ही है। नियंता न तो इस पृथ्वी का सर्वनाश सह सकता है और न उसे यही अभीष्ट है कि मनुष्य अपनी गरिमा का परित्याग कर नर पशु या नर पिशाच जैसा आचरण अपनाकर सृष्टा को कलंकित करे। असंतुलन विनाश का बीज बोता है, इसलिए प्रकृति समय रहते अनर्थ को रोक देती है और शाश्वत सौजन्य को उसके नियत स्थान पर विराजमान करा देती है। 21वीं सदी में अब तक बिखेरी गई गंदगी की सफाई होने जा रही है। तूफानी अंधेर कूड़े कचरे को उड़ाकर कहीं से कहीं पहुंचाने वाला है, ताकि सुंदरता और सुव्यवस्था अपने स्थान पर अक्षुण बनी रहे। दिव्यदर्शी यह अनुभव करते रहे हैं कि 20वीं सदी के अंत तक अवांछनीयताएं अपना पसारा समेट लेंगी और 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य को आंचल में लपेटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी। भावी संभावनाएं भविष्य कथन। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं से भरी है। उसमें समता और एकता का बोलबाला होगा। यह स्फुरना मूल चेतना संपन्न विशिष्ट व्यक्तित्वों के अंत करण में चिरकाल से प्रस्फुटित होती रही है। कुछ विश्वविख्यात भविष्यविद संसार के विभिन्न भागों में ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने विश्व समस्या और उनके बदलाव के संबंध में बहुत कुछ कहा है और वह प्रायः समय पर सही सिद्ध होता रहा है। अब से कोई 450 वर्ष पूर्व फ्रांस में एक नेस्ट्राडामस नामक व्यक्ति हुए थे। उन्होंने अब तक की घटी विश्व घटनाओं के संबंध में बहुत कुछ कहा है और वह कथन हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने सन 2000 के उपरांत आने वाले समय को एज ऑफ ट्रूथ के नाम से वर्णित किया है और नव संरचना में भारत की प्रमुख भूमिका होने का उल्लेख किया है। उसकी पुस्तक पर एक सुविस्तृत व्याख्या लिखते हुए जॉन हॉग नामक मनीषी ने एक नया ग्रंथ लिखा है, नेस्ट्राडामस एंड द मिलेनियम। उसमें भारत के संदर्भ में उनके कथन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि एक नई चेतना का उद्भव सन 1990 से आरंभ होने जा रहा है जो समस्त विश्व को प्रभावित करेगी, किंतु वह उदित भारत से होगी। डॉक्टर जीरो मार्गरेट मीड, हरमन कौन, पीटर हरकोस, विलियम जैसे विश्वविख्यात भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसी संभावनाएं घोषित की हैं कि 21वीं सदी में मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान होगा और ऐसी परंपराओं का प्रचलन चल पड़ेगा जिससे प्रगति और शांति का आधार खड़ा हो सके। प्रोफेसर हरारा भी इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने कहा है, भारत एक विराट शक्ति के रूप में उभरेगा और उसे नवसृजन के क्षेत्र में अनेक देशों और विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त होगा। जीन डिक्सन की माई लाइफ एंड प्रोफेसीज पुस्तक में लिखा है, 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में पाश्चात्य सभ्यता भोगवाद छोड़कर पूर्वात्य सभ्यता की शरण में आएगी। नीति की विजय होगी। विश्व शांति की स्थापना में भारत की विशेष भूमिका होगी। प्रो शून्य कीरो ने भी ठीक इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त किया है। महामनीषी हक्सले कामा ने अपनी पुस्तक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लिखा है, पिछली सभी क्रांतियों से बढ़कर अगले दिनों एकता और समता स्थापित करने वाली विश्व क्रांति उभर कर आ रही है। इसके लक्षण 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में प्रत्यक्ष होने लगेंगे। इस्लाम भविष्य की आशा पुस्तक में सैयद कुतुब ने लिखा है कि 21वीं सदी का प्रारंभ धर्म और विज्ञान के समन्वय से होगा। महर्षि अरविंद के अनुसार सन 2000 से पूर्व ही आत्मबल संपन्न प्रतिभाओं में उत्कृष्ट सुपर चेतना का अवतरण होगा जो व्यक्ति के विचारों में भारी परिवर्तन लाएगी। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में एक भाषण में कहा था कि भारत के प्रज्ञावान आगे आएंगे और वे एकता समता वाली विश्व संस्कृति को भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाएंगे। संसार भर में पढ़े जाने वाले प्रतिष्ठित पात्र टाइम में लिखा है, भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाले प्रयास अब तेजी से आरंभ हो गए हैं। इसी पत्रिका का द 2 अप्रैल 1989 का अंक पूरी तरह भारत को समर्पित किया गया है और लिखा है कि एक नया नेतृत्व भारत के रूप में उभर रहा है। भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत, युवा शक्ति, बुद्धिजीवियों और प्रतिभावानों की प्रचुर संख्या के आधार पर अगले दिनों विश्व का नेतृत्व करेगा। वाशिंगटन पोस्ट में छपे एक आकलन के अनुसार सूर्य में इन दिनों असाधारण उभार आ रहा है। उनका प्रभाव 1989 तक असाधारण रूप से प्रकट होता देखा जाएगा। अन्य प्रभावों के अतिरिक्त इस कारण भारत को शीर्ष शिखर पर पहुंचता देखा जा सकेगा। इसी प्रकार अन्य विशेषज्ञों के मतानुसार भविष्य ध्वंस के निरस्त होने और विकास के समुन्नत होने से संसार में सुखद परिस्थितियां उत्पन्न होने का उल्लेख जगह जगह मिलता है। जिन दिनों इंग्लैंड पर जर्मनी के लगातार वायुयान आक्रमण की बम वर्षा हो रही थी, उसके कारण उत्पन्न हुए ध्वंस को देखते हुए सर्वत्र बेचैनी निराशा छाई हुई थी, उन दिनों उस देश के प्रधानमंत्री चचिल थे। उन्होंने उसी निराशा के बीच एक नया नारा दिया जो चप्पे चप्पे पर अंकित कर दिया गया। नारा था वी फॉर विक्ट्री, जिसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड अंततः विजय होकर रहेगा, जीत हमारी ही निश्चित है। इस उद्घोष ने उस क्षेत्र में एक नया उत्साह भर दिया और लोग पलायन की निराशा की बात छोड़कर कठिनाइयों से निपटने के लिए एकजुट हो गए। जीत अंततः मित्र राष्ट्रों की ही हुई। पिछले 300 वर्षों में हुए शक्ति के असाधारण दुरुपयोग को देखते हुए इन दिनों जन जन में भावी संभावनाओं के प्रति आशंका और दुखद समस्याओं की कल्पनाएं जड़ जमाती जा रही हैं। मनोबल टूटने का दुष्परिणाम सर्वविदित है। स्थिति को देखते हुए इन दिनों सृजनात्मक नया उत्साह उत्पन्न करने और सृजन के लिए जुट पड़ने का वातावरण बनाने की नितांत आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के उद्घोष को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए शांतिकुंज द्वारा जो वातावरण बनाया जा रहा है उसकी महत्ता समझी जानी चाहिए। विश्वासपूर्वक ऐसे प्रयत्नों को अपनाना चाहिए जो पिछले दिनों के बिगाड़ की क्षतिपूर्ति अगले ही दिनों कर सकने में समर्थ हो सकें। 21वीं सदी की आध्यात्मिक गंगोत्री। शांतिकुंज में युगसंधि महापुरुष चरण आरंभ करने का संकेत उतरा है। यह 12 वर्ष तक चलेगा। एक मत के अनुसार 12 वर्ष का एक युग भी होता है। सूक्ष्म जगत में हर 12 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होते हैं। कितनी ही तप साधनाओं का विधान भी ऐसा है जो 12 वर्ष में पूरा होता है। युग संधि भी 12 वर्ष की है। इसमें शांतिकुंज द्वारा एक व्यापक धर्मानुष्ठान भी चल पड़ा है और कितने ही सृजनात्मक सुधारात्मक प्रयोजनों का शुभारंभ परिपूर्ण शक्ति का नियोजन करते हुए किया गया है। 9 दिन के और 1 महीने के सत्र इस भूमि में सुनियोजित रूप से चल पड़े हैं, जिनमें साधनात्मक तपश्चर्या का भी समावेश है और प्रतिभा परिष्कार का प्रशिक्षण तथा प्रेरणा प्रवाह का अनुपम समन्वय भी। हर महीने 1 मास के सत्र चलते हैं। जिनके पास अवकाश कम है वे 9 दिन में ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं। यह दोनों ही सत्र साधना प्रधान हैं। इनमें शिक्षण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तित्व को निखारने और प्रतिभा को परिष्कृत करने में काम आ सके। साधना 12 वर्ष की है, इसलिए लोक सत्रों में इसका शुभारंभ करने के उपरांत अपने अपने यहाँ साप्ताहिक सत्संगों के रूप में सामूहिक उपासना का क्रम चलाते हैं। उनमें अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित और सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार यह उपक्रम अधिकाधिक विस्तृत होता जाता है। लाखों लोग से भी इस क्रम में अगले दिनों सक्रिय दिखाई देंगे। प्राचीन काल में जनमानस में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए वानप्रस्थ परंपरा चलती रहने से लोकसेवियों की कहीं भी कमी नहीं पड़ती थी। फिर इन दिनों भी क्या मुश्किल है जो जन कल्याण में निरत होने की महत्वाकांक्षा अनेकानेक उदारचेताओं में उत्पन्न की जा सके। बुद्ध और गांधी के आंदोलनों में सम्मिलित होने वालों की संख्या अनायास ही लाखों में पहुंची थी। अब फिर वैसी ही परंपरा समय की मांग पूरी करने के लिए न चल सके ऐसी कोई बात नहीं है। विशेषतया तब जबकि अदृश्य जगत से निस्सृत होने वाले दैवी प्रवाह का उसमें योगदान जुड़ रहा हो। अकेला भागीरथ जब गंगा का अवतरण स्वर्ग से धरती पर कर सकता है तो अनेकों अद्भुत प्रतिभाओं का कौशल हर क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखा सकता है। तो कोई कारण नहीं कि नव सृजन के लिए युगशिल्पी विनिर्मित करने की दैवेच्छा पूरी हो सकना संभव न हो सके। समय पर वासंती पुष्पों की तरह प्रतिभाएं पुण्य प्रयोजन के हित अनायास ही उभरती और निखरती देखी जाती हैं। 21वीं सदी को भी दूसरा गंगावतरण ही कहा जा सकता है। इसका उद्गम ढूंढना हो तो गंगोत्री की समता शांतिकुंज से दी जा सकती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है। बाद में उनका विस्तार और प्रवाह क्रमशः बढ़ता ही चला गया है। 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष जिस पांचजन्य से अंतरिक्ष को गुंजित करने लगा है उसे यदि कोई चाहे तो शांतिकुंज भी कह सकता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली के अतिरिक्त इस भूमि को दिव्य साधनाओं और यज्ञ कृत्यों से पवित्र एवं सशक्त बनाया गया है। दिव्य संरक्षण एवं दिव्य वातावरण की भी यहाँ कमी नहीं है। ऐसे ही अनेक कारणों से दैवी चेतना ने यदि इस आश्रम को युग अवतरण के लिए भागीरथी प्रयत्न करने का कार्यभार सौंपा है तो वह उचित ही है। अत्यंत व्यस्त असमर्थ लोगों के लिए एक प्रतीक साधना भी युग संधि पुरस्चरण के अंतर्गत नियोजन की गई है। प्रातः काल आंख खुलते ही 5 मिनट की इस मानसिक ध्यान धारणा को संपन्न किया जा सकता है। अपने स्थान से ध्यान में ही हरिद्वार पहुंचा जाए, गंगा में डुबकी लगाई जाए, शांतिकुंज में प्रवेश किया जाए, गायत्री मंदिर और यज्ञशाला की परिक्रमा की जाए, अखंड दीपक के निकट पहुंचा जाए, कम से कम 10 बार वहां बैठकर जप किया जाए, माताजी से भक्ति का और गुरुदेव से शक्ति का अनुदान लेकर अपनी जगह लौट आया जाए। इस प्रक्रिया में प्रायः 5 मिनट लगते हैं एवं महापुरुष चरण की छोटी भागीदारी इतने से भी निभ जाती है। जिसके पास समय है वे गायत्री का जप और सूर्य का ध्यान सुविधानुरूप अधिक समय तक करें। यह क्रम सन 2000 के अंत तक चलेगा। इस महापुरुष चरण की पूर्णाहुति 21वीं सदी के आरंभ में सन 2001 में होगी। आशा की गई है कि उसमें 1 करोड़ साधक भाग लेंगे। अधिक व्यक्तियों का एकनिष्ठ एक लक्ष्य प्राप्ति हेतु जब एकत्रीकरण होता है तो एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। इस पूर्णाहुति का प्रतिफल भी असाधारण एवं चमत्कृतियां पूर्ण होना चाहिए। नवसृजन की अनेक धाराएं उसमें से फूट चाहिए और अनेक क्रियाकलाप समुचित समर्थ के साथ उभरने चाहिए। इस पूर्णाहुति के सत्परिणाम सन 1958 में गायत्री तपोभूमि मथुरा के तत्वावधान में एक सहस्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें 4 लाख साधक आए थे। दर्शक तो कुल 15 लाख थे। इन साधकों को सम्मिलित करके प्रायः 6000 शाखा संगठन बनाए गए थे और भारत की देव संस्कृति को नवजीवन प्रदान करने का सभी के द्वारा संकल्प लिया गया था। विगत 30 वर्षों में अब तक जो भी महत्वपूर्ण नवसृजन कार्य संपन्न हुए हैं वे उसी के सत्परिणाम हैं। सन 2001 में जो 1 करोड़ साधकों द्वारा व्रतशील पूर्णाहुति होने जा रही है उसका धक्का पूरे 100 वर्षों तक अपनी शक्ति का परिचय देता रहेगा और युग परिवर्तन की प्रतिक्रिया को काल्पनिक नहीं सर्वथा सार्थक बनाकर रहेगा। इस आयोजन में उपस्थित जनों में से प्रत्येक को नवनिर्माण के लिए वह काम सौंपे जाएंगे जिन्हें वे अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुरूप करते रह सकें। इसी अवधि में 1 लाख लोकसेवी विनिर्मित प्रशिक्षित कर लेने की बात कठिन एवं असंभव जैसी लगती तो है, पर यदि उसके लिए तूफानी आंदोलन खड़ा किया जा सके और प्रचलन का वैसा ही प्रवाह उगाया जा सके तो एक को देखकर दूसरा व्यक्ति बुरी ही नहीं अच्छी परंपराएं भी अपना सकता है। संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो यदि सच्चे मन से चाहे तो गुजारे के पश्चात जनकल्याण का कुछ न कुछ काम न करता रह सके। बिहार प्रांत के हजारी किसान ने आम के उद्यान लगाए जाने की उपयोगिता समझी और उस कार्य में परिपूर्ण लगन के साथ जुट पड़ा। फलत उसने अपने जीवनकाल में उस क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर 1000 अमृत उद्यान लगावाए। लगन का चमत्कार देखते हुए लोगों ने उस इलाके का नाम हजारी बाग रखा। 1000 बागों वाला हजारी बाग प्रश्न योग्यता या सुविधा का नहीं लगन का है। यदि वह सच्चे मन से लगी हो तो शीरी का प्रेमी फरहाद अकेले पुरुषार्थ से भी 32 मील लंबी नहर पहाड़ों से होकर खोद लाने की चुनौती पूरी कर सकता है। संकीर्ण स्वार्थपरता की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों के लिए अपनी तृष्णा पूरी कर सकना भी कठिन है, पर उदारचेता तो ढेरों समय श्रम और मनोयोग उससे बचाकर उससे ढेरों महत्वपूर्ण कार्य करते रह सकते हैं और अपना इतिहास अमर बना सकते हैं। विश्वास है कि ऐसा ही वातावरण 21वीं सदी आने से पूर्व बना लिया जाएगा। शिक्षण सत्र व्यवस्था प्रतिभा परिष्कार और नवसृजन का राजमार्ग तैयार करने में शांतिकुंज अपने ढंग की अनोखी भूमिका संपन्न कर रहा है, जिसमें युग शिल्पियों का उत्पादन और अभिवर्धन प्रमुख है। कम समय में कम साधनों से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए थोड़े थोड़े समय के प्रशिक्षण सत्र रखने पड़ते हैं। विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए 1 महीने के और व्यस्त परिस्थितियों वालों के लिए 9-9 दिन के शिक्षण सत्र रखे गए हैं। हर महीने 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 तक यह सत्र सम्पन्न होते रहते हैं। इनमें सम्मिलित होने के इच्छुक अपना पूरा परिचय भेजकर इच्छित सत्र में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। स्थान भर गया हो तो अगले किसी निकटवर्ती सत्र की स्वीकृति मिल जाती है। शिक्षित समर्थ उत्साही और अनुशासन प्रिय वयस्क पुरुषों की ही भांति उन सुयोग्य महिलाओं को भी सम्मिलित होने की सुविधा है जिनकी गोदी में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं हैं। बहुत छोटे बच्चे शिक्षण व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, माताओं का ही नहीं दूसरे शिक्षार्थियों का भी ध्यान बढ़ता है। महिलाओं पर बालकों संबंधी प्रतिबंध इसीलिए रखे गए हैं। अपने समय का महान आंदोलन नारी जागरण युग संधि के इन्हीं 12 वर्षों में एक और बड़ा आंदोलन उभरने जा रहा है, वह है महिला जागरण। इस हेतु चिरकाल से छिटपुट प्रयत्न होते रहे हैं। न्यायशीलता सदा से यह प्रतिपादन करती रही है कि नर और नारी एक समान का तथ्य ही सनातन है। गाड़ी के दोनों पहियों को समान महत्व मिलना चाहिए। मनुष्य जाति के नर और नारी पक्षों को समान श्रेय सम्मान महत्व और अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रतिपादन के बावजूद बलिष्ठता के अहंकार ने पुरुष द्वारा नारी को पालतू पशु जैसी मान्यता दिलाई और उसके शोषण में किसी प्रकार की कमी न रखी। सुधारकों के प्रयत्न भी जहां तहां एक सीमा तक ही सफल होते रहे, समग्र परिवर्तन का माहौल बन ही नहीं पाया, किंतु यह अनोखा समय है जिसमें सहस्राब्दियों से प्रचलित कुरीतियों की जंजीरें कच्चे धागे की तरह टूटकर गिरने जा रही हैं। युग संधि के इन वर्षों में भारत की महिलाओं को 30% शासकीय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। अगले दिनों हर क्षेत्र में उनका अनुपात और गौरव भारत में ही नहीं विश्व के कोने कोने में भी निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इसी प्रकार अन्य संपन्न देशों में नारी की स्थिति लगभग पुरुष के समान ही जा पहुंची है और वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर ऐसा परिचय दे रही हैं, जिसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वे पुरुषों से किसी प्रकार पीछे हैं। इस्लाम धर्म में नारी पर अधिक प्रतिबंध है, शासन सत्ता उन्हें सौंपने का विधान नहीं है। फिर भी पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री का पद हथिया लिया और एक नई परंपरा को जन्म दिया था। भारत का नारी जागरण अपने ढंग का अनोखा हुआ। उनका आत्मविश्वास जागेगा, प्रगति पथ पर चलने का मनोरथ अदम्य रूप से उभरेगा। इस बार पुरुषों का रुख बाधा पहुंचाने का नहीं, वरन उदारतापूर्ण सहयोग देने का होगा। शांतिकुंज ने निश्चय किया है कि भारत के हर गांव नगर में पहुंचकर महिलाओं को भावी संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा और उन्हें प्रगतिशील बनाने के लिए उनमें अदम्य उत्साह जगाया जाएगा। इसके लिए प्रथम कार्यक्रम यह हाथ में लिया गया है कि 24,000 महिला दीपयज्ञ इस प्रकार संपन्न किए जाएंगे कि उनमें देश की अधिकांश महिलाओं को एकत्रित और संगठित किया जा सके। इसके लिए शिक्षित महिलाओं को कमान संभालने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जो अपने अपने समीपवर्ती क्षेत्र में इस आंदोलन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में निरत होंगी। दीपयज्ञ नितांत सुगम, खर्च रहित और अतीव प्रेरणाप्रद सिद्ध हुए हैं। उनमें परमार्थ श्रद्धा जगाने की प्रक्रिया का भी समुचित समावेश सिद्ध हो चुका है। पिछले दिनों पुरुष प्रधान दीपयज्ञ आशा से अधिक सफल हुए हैं। इस माध्यम से लोगों द्वारा आत्म परिष्कार एवं लोक कल्याण के लिए बढ़ चढ़कर व्रत धारण किए और संकल्प लिए गए हैं। इस वर्ष महिला प्रधान यज्ञों की बारी रहेगी। पुरुष उसमें सहयोगी की तरह सम्मिलित रहेंगे और सफल बनाने में योगदान देंगे। केंद्र से भेजी गई गाड़ियों की अपेक्षा स्थानीय नर नारियों को यह मोर्चा संभालने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन आयोजनों के साथ साथ ही महिला मंडलों का संगठन आरंभ कर दिया जाएगा। 1 से 5, 5 से 25 बनने का उपक्रम नव सृजन का आधारभूत सिद्धांत है। इस आधार पर जीवंत जागृत महिलाओं की सुसंगठित टोलियां हर क्षेत्र में खड़ी होती दिखाई पड़ेंगी। महिला आंदोलन अगले ही दिनों 2 कार्य हाथ में लेगा, एक शिक्षा और स्वावलंबन की विधा को प्रोत्साहन, दूसरा धूमधाम वाली खर्चीली शादियों में महिला समुदाय का असहयोग। परंपरावाद के नाम पर प्रतिगामिताओं ने, मूल मान्यताओं, अंत परंपराओं, कुरीतियों, कुंठाओं ने नारी समाज को बुरी तरह अपने चंगुल में जकड़ा है। खर्चीली शादियों ने बेटी बेटे के बीच अंतर की मोटी दीवार खड़ी की है। उसे पूरी तरह गिरा देने का ठीक यही समय है। बहू और बेटी के बीच अंतर खड़ा न करने वाला दृष्टिकोण इस आंदोलन के ही साथ जुड़ा हुआ है। जब उन्हें भावी पीढ़ी का नेतृत्व करना है तो आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित, सुयोग्य, दक्ष एवं प्रगतिशील भी बनाया जाए। 24,000 यज्ञों के साथ जहां महिला संगठन का प्रयोजन प्रत्यक्ष है, वहां यह भी उत्साह भरना आवश्यक है कि उन्हें हर दृष्टि से सुयोग्य बनाने में कुछ कमी न छोड़ी जाए। आशा की गई है कि अगले 5 वर्षों में एक भी नारी अशिक्षित न रहेगी और खर्चीली शादियों का प्रचलन कहीं भी दृष्टिगोचर न होगा। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती दिखाई देंगी। लोकसेवी जीवनदानी न केवल पुरुषों में उत्पन्न किए जाने हैं, वरन योजना यह भी है कि बच्चों वाली महिलाएं अपने निकटवर्ती क्षेत्र में काम करें और जिनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, वे नारी उत्थान का तूफान उठाने, घर घर अलख जगाने के लिए सच्चे अर्थों में देवी की भूमिका संपन्न करके दिखाएं। इन दिनों महिला वर्ग में ही साक्षरता संवर्धन का तूफानी आंदोलन जुड़ा रहेगा। साक्षर होते ही उन्हें ऐसा साहित्य दिया जाएगा जो उन्हें नवयुग के अनुरूप चेतना प्रदान करने में समर्थ हो। पुरुषों में प्रतिभा संवर्धन आंदोलन चलाने के अतिरिक्त नारी जागरण का आलोक वितरण करने वाला साहित्य भी आवश्यक है। शांतिकुंज ने उसे देश की सब भाषाओं में उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। विचार क्रांति जनमानस का परिष्कार। छोटा मकान बनाने में कितने साधन जुटाने पड़ते हैं और कितना ध्यान देना पड़ता है, उसे सभी भुक्तभोगी भली प्रकार जानते हैं। फिर जहां खंडहर स्तर की दुनिया को नवयुग के भव्य भवन में विकसित करना है, वहां कितने अधिक कौशल की, कितने साधनों की, कितनी प्रतिभाओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। सुधार और सृजन के 2 मोर्चे पर दुधारी तलवार से लड़ा जाने वाला यह पुरुषार्थ कितना व्यापक और कितना बड़ा होगा, इसका अनुमान लगाने पर प्रतीत होगा कि यह प्राचीन काल के समुद्र सेतु बंधन, लंका दहन, संजीवनी बूटी वाला पर्वत उखाड़कर लाने जैसा कठिन होना चाहिए। इसे गोवर्धन उठाए जाने की उपमा दी जा सकती है और अगस्त्य द्वारा समुद्र को पी जाने जैसा अद्भुत भी कहा जा सकता है। अवतारों द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए जाते रहे परिवर्तनों के समकक्ष भी इसे कहा जा सकता है। पूर्वकाल में संसार भर की आबादी बहुत कम थी। अब से 2000 वर्ष पूर्व संसार में प्रायः 30 करोड़ व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक छोटी संख्या ही उद्दंडों की पनपी थी और तोड़फोड़ में लगी थी। उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए परशुराम ने कुल्हाड़ा उठाया था और जिन्हें बदलना आवश्यक था उनका सिर चिंतन पूरी तरह फेर दिया था। अब संसार की आबादी 600 करोड़ है। इसमें से अधिकांश जन समुदाय विचार विकृति और आस्था संकट से ग्रसित है। अधिकांश का चिंतन मानवीय गरिमा के अनुरूप चल नहीं रहा है। अवांछनीयताएं हर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाती चली जा रही हैं। इसके लिए विश्वव्यापी विचार क्रांति की आवश्यकता है। एक प्रयोजन के लिए खड़ी की गई छोटी मोटी क्षेत्रीय क्रांतियां कितनी कठिन पड़ी हैं, इसे इतिहासवेत्ता जानते हैं। अब मन क्षेत्र में व्याप्त अभ्यस्त दृष्टिकोणों का आमूलचूल परिवर्तन किया जाना है। यही जनमानस का परिष्कार है। अवांछनीयताओं का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी यही है। इसे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक संपन्न करना इतना बड़ा काम है जिसके लिए हजारों परशुराम भी कम पड़ेंगे। इतने पर भी यह निश्चित है कि यह भवितव्यता संपन्न होकर रहेगी। शालीनता, आत्मीयता, सद्भावना और सहकारिता का नवयुग अवतरित होकर रहेगा। इस पुण्य प्रवाह को प्रगतिशील करने के लिए असंख्य भगीरथों की आवश्यकता पड़ेगी। ध्वंस सरल है और सृजन कठिन। माचिस की एक तीली समूचे छप्पर और गांव मोहल्लों को जला सकती है, पर एक राज्य बसाने के लिए तो अनेक समर्थों का कौशल चाहिए। सृजन प्रयोजनों के निमित्त समयदान। युग संधि के अगले 10 वर्षों में शांतिकुंज को कई अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। हाथ में लिए गए कार्यों को द्रुतगति से पूरा किया जा रहा है। इस अवधि में 1,00,000 नए ऐसे नर नारी लोकसेवी स्तर के विनिर्मित करने हैं जो पूरा समय न दे सकने की विवशता में कुछ घंटे नियमित रूप से अपने क्षेत्र में सृजन प्रयत्नों के लिए लगाते रहें। सन 2000 तक की अवधि में ही इस महापरिवर्तन के 1 करोड़ भागीदार बनाए जाने की योजना है, जो युग संधि की पूर्णाहुति में सम्मिलित होकर अगले दिनों के लिए अपने दायित्वों को व्रतशील होकर धारण कर सकें। अशिक्षित जनता को इस आधार पर शिक्षित बनाया जाना है कि हर वर्तमान शिक्षित व्यक्ति औसतन 10 अशिक्षितों को शिक्षित बनाने का संकल्प लें और विद्या प्राप्ति के ऋण से उऋण हों। यह आंदोलन शिक्षा संवर्धन का वह कार्य कर सकेगा जो असंख्य नए स्कूल खोलने और उन पर अपार धनराशि व्यय करने पर भी संभव नहीं। कुप्रचलनों में से विवाह विकृति का निवारण करने के लिए बिना धूमधाम और बिना दहेज जेवर की शादियां कराने की इक्का दुक्का घटनाएं ही नहीं घटती रहने देनी है, वरन उस प्रचलन को सामान्य प्रथा बनाकर रहना है। इसके साथ ही अन्य कुप्रचलन, अंधविश्वास, अनाचार घटते और मिटते चले जाएंगे। हर व्यक्ति को नवसृजन प्रयत्नों के लिए कुछ समयदान और अंशदान देते रहने के लिए सहमत कर लिया जाएगा तो उतने छोटे सहयोग से भी हर क्षेत्र में अनेक सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियां भी फलने फूलने लगेंगी। अशिक्षा की निद्रा से जब 2/3 जन समुदाय जागेगा और चेतन स्थिति में पहुंचेगा तो निश्चय ही उसकी ज्ञान पिपासा बड़े चढ़े स्तर की होगी। बौद्धिक क्षुधा उसे आकुल व्याकुल कर रही होगी। उसकी पूर्ति यदि उपयुक्त युग साहित्य से न हो सकी तो परिणाम यह होगा कि लोग अभक्ष्य खाने जैसे विकृत साहित्य को अपनाने लगेंगे और उससे भी अधिक घाटा उठाएंगे जो कि अशिक्षित रहने पर उठा रहे थे। अस्तु, आने वाले नवयुग के मनुष्य के लिए अभिनव साहित्य को हर भाषा में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। उसकी व्यवस्था अत्यंत विकट एवं बोझिल होते हुए भी पूरी की ही जाएगी। अभी प्रज्ञा परिजन ही प्रमुख रूप से नवसृजन का आंदोलन जन स्तर पर चला रहे हैं, पर विश्वास किया गया है कि अगले दिनों इस समुद्र मंथन में उच्च स्तरीय प्रतिभाएं भी सम्मिलित होंगी। मनीषा के धनी, संपत्तिवान, प्रतिभाशाली कलाकार उदारचेता महामानव इसी श्रेणी में आते हैं। उनका दिशा परिवर्तन होगा। आज वे जिस संकीर्ण स्वार्थ साधना में लगे हैं उससे 10 कदम आगे बढ़कर उन कार्यों को हाथ में लेंगे जिन्हें करने के लिए समय की मांग उन्हें प्रेरित और बाधित करेगी। त्याग करना यूं सामान्य जनों के लिए कठिन पड़ता है, पर आड़े समय में मानवीय अंतराल में निवास करने वाली अंत चेतना भी उभरती है और ऐसे प्रयास कराती है जिनके करने का उन्हें पूर्व अभ्यास न था। बुद्ध काल में लाखों परिव्राजकों और गांधी काल में लाखों सत्याग्रहियों का अनायास ही उभर पड़ना यह बताता है कि समय की मांग को गूंगे बहरे भले ही न सुने, पर चेतन एवं सही सलामत व्यक्ति युग धर्म के परिपालन से इनकार कैसे कर सकते हैं। ऐसे प्राणवानों को झकझोरने और नींद से विरत होकर तनकर खड़े हो जाने की स्थिति उत्पन्न करने में शांतिकुंज का तंत्र अभी से पूरी तैयारी कर रहा है। 21वीं सदी में उनकी कहीं कोई कमी न रहेगी। उनका उभार तो युग संधि वेला में ही दिखने लगेगा। हिमालय से अधिकांश नदियां निकलती हैं। तुलना करने पर शांतिकुंज को भी ऐसा ही कुछ करते देखा जाएगा जिसमें कि असंख्यों को दिशा प्रेरणा के स्रोत उपलब्ध हों। इस जेनरेटर की ऊर्जा से विद्युत उपकरणों को गतिशील होने की शक्ति मिल सके। दैवी सत्ता का सूत्र संचालन। विश्वास किया जाना चाहिए कि ऐसे बड़े काम महाकाल के तत्वावधान में उसकी ही विनिर्मित योजना के अनुसार संपन्न होने हैं। वही राय को पर्वत और पर्वत को राय बनाता है। सृष्टा निराकार होने के कारण प्रत्यक्षत कुम्हार की तरह संरचना करते नहीं देखा जाता। महान कार्य महान व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होते रहे हैं। यह महानता सामान्य मनुष्य की नहीं, उसी महान की योजनानुसार होती है, जो सृजन, परिपोषण और परिपालन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। वही समय समय पर धर्म की हानि और अधर्म की बाढ़ को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा के अनोखे प्रयोग करता है। मनुष्य जैसा अद्भुत प्राणी जिसने सृजा, जिसके नायकत्व में संसार की सारी व्यवस्था चलती है, वह जो योजना बनाए वह अधूरी कैसे रहेगी? उसके संकल्प एवं नियोजन में प्रतिरोध कौन खड़ा करेगा? महत्वपूर्ण कार्य भगवान करते हैं और उसके श्रेय को शरीरधारी मुफ्त में ही प्राप्त कर लेते हैं। चेतना काम करती है और शरीर को श्रेय मिलता है। तेज तूफान के सहारे पत्ते और तिनके भी आकाश चूमते हैं। नदी के प्रवाह में बहती हुई टहनी बिना श्रम के समुद्र में जा मिलने का लंबा सफर पूरा कर लेती है। दैवी सत्ता की सहायता से सुदामा, नरसी मेहता, विभीषण, सुग्रीव, शबरी, गिलहरी, रीछ, वानर आदि ने वह श्रेय उपलब्ध किया था जिसे वे मात्र अपने बलबूते कदाचित ही कर पाते। वह सत्ता इन दिनों अपनी ओर से उत्सुक और प्रयत्नशील है कि श्रेयाधिकारी आगे आए और वह श्रेय प्राप्त करें जो असंख्यों के लिए प्रेरणाप्रद बने तथा अनंतकाल तक अनुकरणीय अभिनंदनीय समझा जाता रहे। दिव्य सत्ता का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व अपने ही भीतर है। उसे आत्मपरिष्कार और लोकमंगल की साधना द्वारा सहज ही अभीष्ट सहयोग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन, हनुमान को ऐसा ही दिव्य सहयोग मिला था। असंख्य महामानव इसी आधार पर कृतकृत्य हुए हैं। युग निर्माण योजना द्वारा संपन्न हुए अगणित लोकोपयोगी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के पुरुषार्थ से नहीं, वरन दैवी प्रेरणा और अनुकंपा के आधार पर ही आश्चर्यजनक रूप से विकसित, विस्तृत एवं सफल होते रहे हैं। शांतिकुंज से सन 1989 से लेकर सन 2000 तक की एक सुविस्तृत योजना और कार्य पद्धति विनिर्मित की है। वातावरण में असाधारण उत्साह और साहस भरने का प्रयत्न किया है। आशा की जानी चाहिए कि इसके पीछे दैवी शक्ति का समर्थन होने के कारण अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण होकर रहेगा। इस मिशन के संस्थापक संचालक अपने 80 वर्ष के जीवन में संपन्न हुए क्रियाकलापों के पीछे प्रधान कारण दैवी शक्ति की अनुकूलता एवं अनुकंपा ही मानते हैं। वे कहते हैं कि उनकी सामान्य सी मन स्थिति और साधनों को देखते हुए जो कुछ बन पड़ा है वह इतना अधिक है जिसे गोवर्धन पर्वत उठाने के समतुल्य कहा जा सकता है। साहित्य सृजन, संगठन, सृजनात्मक आंदोलन, प्रज्ञा केंद्रों का हजारों की संख्या में निर्माण जैसे सर्वविदित कार्य ही ऐसे हैं जिनका ब्यौरा जानने पर सहज ही यह विश्वास नहीं होता कि इतना कुछ एक व्यक्ति द्वारा बन पड़ेगा। वे तथ्य तो एक ही बात का संकेत करते हैं कि किसी कुशल बाजीगर की अंगुलियों के मार्गदर्शन और सहयोग से ही यह सब बन पड़ा है। अगले दिनों जो इस तंत्र द्वारा किया जाना है उसकी रूपरेखा समझने पर सहज बुद्धि को यह विश्वास दिलाना कठिन है कि विश्वव्यापी सृजन प्रयोजनों में जितनी प्रतिभाओं और जितने साधनों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था भी हो सकेगी, किंतु वे यह सारे काम पूर्ण करने का निश्चय कर चुके हैं। समस्याएं इतने प्रकार की, इतनी भारी और व्यापक हैं, जिन्हें सुझाने में स्थूल शरीर की क्षमता कम पड़ती है। उस महान कार्य को संपन्न करने के लिए सूक्ष्म शक्ति को आधार बनाकर ही बड़े क्षेत्र में बड़ा काम किया जा सकता है। प्रतिभाओं का असाधारण संख्या में उत्पादन करने के संबंध में भी यही बात है। उल्टे को उलटकर सीधा करने का व्यापक कार्यक्रम भी इतना ही कठिन है। इसके लिए स्थूल शरीर सहायक नहीं बाधक ही होगा। अस्तु, निर्णायक ने वर्तमान स्तर बदल लेने का निश्चय किया है। इसमें अब सीमित समय ही लगने वाला है। किसी को यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि इंजन के बिना रेल कैसे चलेगी। इंजन को समझना हो तो सूत्र संचालक की अदृश्य सत्ता की सामर्थ्य का आकलन करना चाहिए। जहां तक आचार्य जी का संबंध है वहां तक वे बताते हैं कि सन 2000 तक संपन्न किए जाने वाले विशाल योजना क्रम को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, आवश्यक साधन और स्वसंचालित तेज के गतिशील रहने की व्यवस्था बना दी है। साथ ही विश्वास किया है कि वह सब कुछ उनके न रहने पर भी सुनिश्चित ढंग से चलता रहेगा। अश्रद्धालु इसमें संदेह कर सकते हैं, किंतु महाकाल की क्षमता पर जिन्हें विश्वास है वे अनुभव करते रह सकते हैं कि जो प्रक्रिया 80 वर्ष से हर कदम को सफलता प्रदान करती रही है वह अपने समर्पित अकिंचन को सौंपी हुई जिम्मेदारियों को भी स्वयं संभालेगी और जो अभीष्ट हैं उसे संपन्न करके रहेगी। संचालक ने तो सन 2000 तक की पत्रिकाओं का संपादन और अगले दिनों छपने वाले साहित्य का सृजन भी कर दिया है। पीछे के लिए ऐसे उत्तराधिकारी छोड़े हैं जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने में चुकेंगे नहीं। पृथ्वी की विकट आवश्यकताओं को देखते हुए दैवी विधान ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने का पूर्व निश्चय कर रखा था। निमित्त बनने के लिए चूंकि माध्यम की जरूरत पड़ी तो भागीरथ के रूप में वह सहज ही चला आया। इन दिनों ज्ञान गंगा समस्त विश्व का सिंचन करने और समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए उतर रही है। स्वेच्छा पूर्वक अथवा नियमता की विधि व्यवस्था के अनुशासन में जैसे भी हो उज्ज्वल भविष्य की संभावना वाली ज्ञान गंगा का अवतरण निश्चित है। उसका स्वागत अर्चन करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या असंख्यों भावनाशील पंक्तिबद्ध होकर विशाल सेना की तरह खड़े मिलेंगे? क्या वे इतने स्वल्प समय में जुट सकेंगे? जिन्हें महाकाल की इच्छा और योजना के सफल होने का विश्वास है, वे इस प्रतिपादन पर श्रद्धा कर सकते हैं कि राय से पर्वत बनाने वाली शक्ति का नियोजन स्वल्प साधनों और स्वल्प व्यक्तियों के माध्यम से भी संभव है। सन 2000 में अभी लगभग 2 वर्ष शेष हैं। इतने समय में मिशन के सूत्र संचालक अपने स्थूल कलेवर और शक्ति भंडार को व्यापक बनाने के लिए सूक्ष्म शक्ति के माध्यम से 21वीं सदी का गंगावतरण यथा समय संपन्न करके रहेंगे। उस अनुग्रह का समय पर सदुपयोग करने के लिए श्रेयार्थियों को समय रहते कटिबद्ध होने भर की आवश्यकता है। युग देवता ने हर प्राणवान को इन दिनों लिप्सा और कुत्साओं के बंधन ढीले करके नवसृजन के दैवी प्रयास में भागीदारी के लिए पुकारा है। वे सफल तो हर हालत में होने वाले हैं। प्रश्न उस सुयोग सौभाग्य का है जिसे समय पर जागने जागने वाले, आवश्यक साहस दिखाने वाले ही उपलब्ध किया करते हैं। 21वीं सदी अपने ढंग की समग्र क्रांति साथ लेकर दौड़ी आ रही है। उसमें संसार का आनंद और उल्लास से भरा नवसृजन होने वाला है। अवांछनीयताओं का दुर्ग ढहने ही वाला है। इस भवित्व्यता में सहयोगी बनकर समस्त संसार का तो भला किया ही जा सकता है, साथ ही अपने लिए भी उस स्तर का सौभाग्य उपलब्ध किया जा सकता है जिसके प्रभाव से आने वाली अगली पीढ़ियां भी कृतकृत्य हो सकती हैं। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक Asterisk 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूज्यो गुरुदेव के जीवन का सार हैं, सारे जीवन का लेखा जोखा हैं। 1940 से अब तक के साहित्य का सार हैं। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है। कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है। इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहां से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचे, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें, जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका, यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, तब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावना पूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।